नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में दो दिन के दौरे पर ओमान पहुंच गए हैं। जॉर्डन और इथोपिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे हैं। मस्कत हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शहाब बिन तारिक अल शहीद ने श्री मोदी का स्वागत किया। उन्होंने भारत ओमान रक्षा सहयोग मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उप प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके पहले प्रधानमंत्री की अफ्रीकी देश इथियोपिया की दो दिन की सफल यात्रा कल संपन्न हो गई। यह यात्रा परिणामों के लिहाज से बेहद सफल और अभूतपूर्व रही। श्री मोदी को वहां के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली ने इथियोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मस्कत में ओमान इंडिया बिजनेस डायलॉग में श्री गोयल ने कहा कि समझौते के बाद दोनों देशों के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को तलब कर बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल और ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के आसपास बनी खतरनाक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के बारे में वहां के चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही झूठी कहानी को भारत पूरी तरह से खारिज करता है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इसकी न पूरी जांच की है और न ही इन घटनाओं को लेकर भारत के साथ कोई सार्थक सबूत साझा किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन का नई दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन हुआ। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय संयुक्त रूप से आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने पारंपरिक चिकित्सा में भारत के लंबे योगदान का उल्लेख किया और अनुसंधान गुणवत्ता मानकों और वैश्विक सहयोग सुदृढ़ करने के महत्व पर जोर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेसियस ने सहस्त्राब्दियों के चिकित्सा ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ समेकित करने की संगठन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हुई। यह कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा। विधेयक के अंतर्गत हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी की कानूनी गारंटी का प्रस्ताव है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक गांवों के विकास को सुनिश्चित करेगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रसार भारती ने सांस्कृतिक पहुंच को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों के माध्यम से आय अर्जित करने के साथ साथ अपने सार्वजनिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए कंटेंट सिंडिकेशन नीति 2025 का मसौदा तैयार किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में डॉ मुरुगन ने कहा कि इसमें प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डिजिटल फर्स्ट कंटेंट को भी ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी के कामकाज और दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए निरंतर उपाय कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि पिछले एक दशक में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारमन ने कहा कि देश ने वित्तीय समावेशन कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण रोकने के लिए चलाए जा रहे बहुआयामी अभियान के तहत दिल्ली सरकार आज से पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं नियम का सख्ती से पालन शुरू करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एजेंसियों, पेट्रोल पंप संचालकों और पुलिस को पहले दिन से ही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा 2020 क्रिकेट मुकाबला घने कोहरे के कारण रद्द हो गया। पांच मैचों की 2020 श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। पांचवा और आखिरी मुकाबला कल अहमदाबाद में होगा। कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।